ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे स्वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्थिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम शरणं
उसी के उत्तर में ये सारा श्लोक था।
उन्होंने यही पूछा था जो आदमी अभी तुरंत मर रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य है और जो कुछ समय के बाद में मरेगा तो मरेगा जरूर उनके लिए क्या कर्तव्य है। ये मूल दो प्रश्न थे। उसी में सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में पहला श्लोक भजन किया जन्मादस्य जतः अन्यादिकर्तस्य अभिज्ञो परात् तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मोह्यंत जन्तुरय तेजो बाधिदां जप विनमयो सर्वो अमृता धामनाशने दत्तोकम सत्यम परम जीवनी। मैं उस सत्य परम सत्य आनंद स्वरूप पुरुष का मैं ध्यान करता हूं। मैं जिसको ये आत्म किया ये पूर्ण रूप में सफल हो पूरा मैं भागवत को इसकी वंदना है। किसी भी देवता दूसरों की वंदना नहीं की, गणेश की वंदना नहीं की, सरस्वती की वंदना नहीं, शंकर जी की वंदना नहीं, किसी भी देवता देवी की वंदना नहीं, यहां तक के भगवान के जितने अवतार हैं उनको भी वंदना नहीं, किसी वंदना सत्यम परम जो आनंद स्वरूप है जो नित्य सत्य है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है उनको मैं ध्यान करता हूं। हमारे हृदय में ये जिसको ध्यान कर रहे हैं ये कौन है इसके लिए कहा जन्मादस्य जतः जिससे ये सारे विश्व का जन्म होता है। जो हम ये जगत को देखते हैं वही ये जगत नहीं है, तीन जगत है जिसमें एक जगत को देख रहे हैं श्री पाद की भूमि है, तीन भाग में से एक भाग एक चीज जगत है। यहां तक कि कृष्ण की नित्य विलायें होती है उसकी हम खाना नहीं कर सकते ये कैसा सुंदर कैसा आनंद मिलेगा क्योंकि हमारी मातृभूमि वही है जन्म होनी हुई है। और एक होता है जीव जगत वो भी हम नहीं देख पाते और ये जड़ जगत। ये जड़ जगत कौन को देखते हैं किंतु जीव जगत को नहीं देखते और चेतन जगत को नहीं देखते किंतु नित्य वही जगत उसमें आनंद भरा उसमें दुख नहीं है उसमें जन्म मरण नहीं है। और जीव जीव हम सब में है सब में जीव है सभी मने शरीर में कि पतंग पशु वृक्ष नदी नाले पहाड़ स्वर्ग तक के जितने लोग हैं देवता में असुर में गंधर्व में गाय में गधे में सुअर में सब में वो है। इन सब को सृष्टि करने वाला जो है अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि सचमुच में उसका कोई आकार है कि नहीं या वो निराकार है जिसको तुम ध्यान कर रहे हो जो तुम्हारा इष्ट वस्तु है वो निराकार है कि साकार है। क्यों मात्र जीवों को छोड़ करके जितनी दूसरी लोग हैं जाति भगवान को निराकार है। आजकल जीवों में भी बहुत से ऐसे हैं जो भगवान को निराकार कर रहे हैं। निराकार माने जिनको हम देख नहीं सकते जिनमें कोई गुण नहीं है आकार नहीं है वो ब्रह्म है। उसको ध्यान कर रहे हैं ये नहीं इस जगत का कारण क्या है इसलिए सबसे पहले जगत लाया जिससे जगत का जन्म होता है आदि से जन्म होता है जो सबका पालन पोषण करता है और अंत में सभी उसके समीप पहुंच जाते हैं वो ब्रह्म। इसलिए हमारे उपनिषदों में वेदों में सर्वत्र ही ब्रह्म को बताया गया। ब्रह्म कौन है अथा तो ब्रह्म जी क्या है भागवत उसी की व्याख्या है। जब तक कि भागवत को नहीं समझेंगे तब तक वेदों को नहीं समझ सकते उपनिषदों को नहीं समझ सकते हमारी संस्कृति के रामायण महाभारत इत्यादि को नहीं समझ सकते। इसलिए इन चीजों को सरल सहज रूपों में बतलाने के लिए कहा जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक भगवान की जो भक्ति होती है भगवान की जो पूजा होती है वो ठीक नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे पहले श्लोक में बता रहे हैं जिनसे जगत का जन्म होता है जो सबका पालन पोषण करता है और अंत में सभी उसी में प्रवेश कर जाते हैं। मैं उसको नमन कर रहा हूं वो हमारे हृदय में आदि हूं। तो यहां पर जब कह रहे हैं कैसे विचार आता है हम समझते हैं जो जिसका आकार होता है उसका जन्म होता है और फिर वो मर जाता है। तो भगवान या ब्रह्म भी ऐसे ही है कृष्ण का जन्म हुआ तो वो मर गए राम का जन्म हुआ तो वो मर गए कृष्ण के पैरों में बहलिया का बाण लग गया तो वो मर गए और राम लक्ष्मण जी के छोड़ देने के बाद अपने शरीर में वो अयोध्या में सतयुग के किनारे में पहुंचा और उसने गोता लगाया और सब लोग चले गए शरीर को छोड़ दिया। ऐसे लोगों की धारणा है जो परम वस्तु है जिससे कि जगत का जन्म होता है जगत का तो जन्म हुआ किंतु उसका कोई आकार नहीं है वो निराकार है निरंकार है कोई गुण नहीं कोई उसमें एट्रीब्यूट शक्ति नहीं वो हमारे सामने जलाता है तो फिर आकार धारण कर लेता है चला जाता है आकार छोड़ करके ब्रह्म हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग समझते हैं वो है निराकार निर्गुण किंतु जब आता है तो वो हो जाता है तो गुण सका यह बात संपूर्ण रूप से गलत। कृष्ण का भगवान कौन है ब्रह्म जब सुधा के गर्भ से जन्म हुआ वो कृष्ण वो छोटा सा बांसुरी वाला गोकुल राज करने वाला जो सुधा ने उनकी कमर बांध दी उसका आकार था कि नहीं कोई कह सकेगा जो उसका आकार नहीं किंतु कुछ ऐसे लोग हैं इस भारतवर्ष में भी आप लोगों के पास ही में चारों तरफ में भी होंगे वो कहते कृष्ण भगवान नहीं थे ईसाई लोग कहेंगे वो भगवान नहीं थे, उनका ब्रह्म निराकार है। मोहम्मद लोग कहेंगे ये नहीं, उनका आकार नहीं है, अल्लाह निराकार, गॉड निराकार। इससे पहले हमारी उपासना के पहले पहले ही इस चीज को स्थिर कर लेना चाहिए। भागवत जी की पूरी चीज करते हैं, एक चीज को समझिए, है तो गंभीर विषय है, श्रीमद भागवत का दान चीज नहीं है, गंभीर दार्शनिक दृष्टि के ऊपर में प्रतिष्ठित है। गंभीर फिलॉसफी के ऊपर नहीं होता है, और ऐसा है कि सब साथ जिनको बुद्धि नहीं है वो भी भगवान का भजन कर लेंगे, और बुद्धिमान से बुद्धिमान बंदी भी उनका भजन नहीं कर सकेंगे। गाय बछड़े को प्यार करती है, कॉलेज में पढ़ी, ये प्यार नहीं सीखना पड़ता है, बच्चे ने मैया का स्तन पी लिया, स्कूल कॉलेज में पढ़ करके मैया का जब भी जन्म हुआ तब वो स्नेह करने लगी मैया, उसको स्तन से वो पान करता है। इसके लिए प्रेम के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक है। तो जिसको हम प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम ध्यान कर रहे हैं, जब इसका रुपयी नहीं तो ध्यान क्या करें, धीमय शब्द तक नहीं होता है। अभी तो खुद सरल सहज रूप में इसको समझने की चेष्टा, जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे भागवत में प्रवेश नहीं होगा। ऊपर की चीजों को लेकर के हम लोग समझे, इसलिए बड़े बड़े पाठक लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, वो दो चार कहानियां इधर उधर की जोड़ करके और बस सुना देते हैं, उनका जरूरत है पैसे, बस पैसा लिया बस कर दी बात। हम लोग चाहते हैं कि भगवान के विषय में ठोस एक विचार आइडिया है, और हमारी उपासना झूठी मूठी न हो जाए, बेकार की न हो। इसलिए विषय तो बहुत गहरा है किंतु थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनेंगे, बिना चाहिए वे सुने से नहीं आएगा। समस्त फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र के ऊपर में ये भित्ति स्थापित है भागवत की, वहां की फिलॉसफी जो होती है पाश्चात्य देशों की, वहां पर कहते हैं फिलॉसफी बिगिन फ्रॉम वंडर। आज तक व्यक्ति ने तो देखा और ये होता है भाई ये क्या चीज है, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति ऐसे आज तक जैसे नहीं, दर्शन के ऊपर में चिंतित होता है। दर्शन तीन प्रकार का होता है, दर्शन तीन प्रकार का, एक आंखों से या शरीर से जो देखा जाता है, एक मन से देखा जाता है और एक आत्मा से देखा जाता है ना? आंख से जो देखते हैं उसमें बहुत सा भ्रम हो देने की संभावना है, वो ठीक नहीं है। शत्रु और मित्र में आंखों से देख करके नहीं समझा जा सकता। एक कपट व्यक्ति आपका शत्रु है, आपको जान मारने के लिए आया, आपके घर में चोरी करने के लिए आया, बंधु बनकर के ऊपर से आया, पूतना बनकर के आया, जो तो डाल नहीं, इसलिए आंखों से देख करके किसी को नहीं पहचाना। दूसरी बात नहीं मन की, आंख नहीं रहने पर भी एक व्यक्ति ने हमारे हाथ में फल दिया और मैंने उसको सूंघा, तो अरे ये तो आम है, जरा हाथ से समाया कोमल, ये तो आम है। मन के द्वारा विचार करके आंख नहीं रहने पर भी हम बदला देंगे, एक अच्छा आदमी सब काम कर लेता है, आंख नहीं रहने पर मन के द्वारा कर लेता है। हम लोग आंख से नहीं चलते मन से चलते, आंखें ना रहें, आंखें रहने पर भी यदि आदमी का मन नहीं है गिर जाएगा, इसलिए मन अभी हमारा चला रहा, इसलिए मन का एक दर्शन होता है। ये प्रेम करना स्नेह करना आकर्षित होना ये मन की चीज है, ये आंख और शरीर से नहीं होता, असल में हम हैं आत्मा, उस आत्मा के द्वारा जिन चीजों को हम देखेंगे प्रभु को देखेंगे, हमारी दूसरी आत्माओं को देखेंगे, वो असल चीज है। कलकत्ते में एक हमारे रसानंद जी ने भागवत का एक दूसरे उपनिषद का एक बात बताया। इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध किया, उन्होंने असुरों को युद्ध में हराया, अरे मैंने हराया, इसे बड़ा अभिमान हुआ और सब लोग उनको मानो आजकल लोकसभा के लिए वो जीत करके सीट आ रहे हैं और गजन से एकदम भर रहे, सभी लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं, और यदि हार करके आते तो लोग उन्हें दिखाने की तरफ से चले जाए। जीत हुई देवताओं की उन्होंने सोचा कि मैंने जीत लिया, इसलिए जब उनका स्वागत हो रहा था तो बृहस्पति जी उनके गुरु आए, उन्होंने कहा कि गुरु जी इस समय में क्यों आए, इस समय सभी लोग हमारा आदर और सम्मान कर रहे हैं, ये ना आते तो अच्छा था, इसने मुंह फेर दिया, यदि आ जाएंगे तो हमको सीट छोड़ देना पड़ेगा, उनको सब लोग स्वागत करेंगे। इसलिए उनके मन में ऐसी भावना नहीं आते, गुरु जी तो अच्छा, उन्होंने देख करके भी नहीं देखा। बृहस्पति जी उनके मन के भाव को समझ गए, अच्छी बात है समय जाना बस लौट गए। जब लौटे तो कितने असुरों ने देखा कि गुरु के विपरीत हो गए, हराने का बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने लता के साथ में आक्रमण किया और इंद्र को हरा करके एकदम धराशायी कर दिया और वो गुरु के चरण में अपराध करने से सुकर बन करके आए। यहां आने पर 50 सुकरियां उनको मिल गई, 1,00,000 पुत्र और 1,25,00,000 नाती उनको हो गए और बड़े आराम के साथ में ताजा ताजा भोजन उनको मिलने लगा और सोने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर नालियां जिसमें भी गंदी गंदी चीजें बह रही हैं उसमें से स्नान कर रहे हैं, उसी को बड़ा सुंदर शक्ति कहीं मिल जाती है, ताजी ताजी बड़े आराम के साथ में खाते हैं, मिठाई उनको अच्छी मिल जाती है और कहते हैं वाह कितना आराम इस जगत में, हमारे जैसा कोई खुशी नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा ये बेचारा गुरु जी के चरण में अपराध करके सुअर बना हुआ अपने को बड़ा सुखी समझ रहा है, कहा बड़ा दुर्भागा जी इसको कैसे दे इसका कल्याण। वो आए बोले ये देखो तुम इंद्र है तुम स्वर्ग नहीं, चलो तुमको स्वर्ग में ले चलेंगे। कहा जी स्वर्ग में स्वर्ग क्या थी, अरे वही तुम्हारा स्थान है। नहीं नहीं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा वहां पर ऐसी सुंदर सुंदर नालियां मिलेंगी जिसमें स्नान करूंगा, काला भूत बन जाऊंगा और खाने के लिए ऐसी सुंदर सुंदर मनुष्यों की और सबकी चट्टी मिलेगी। अरे राम राम ऐसा मत कहो, वहां पर अमृत है, वहां पर अश्वरायण है, बड़ी सुंदर से सुंदर अश्वरायण है, नंदा निकानंद है, वहां पर बिहार की भूमि है, वहां पर तुम्हारी पत्नी सती देवी है जो समस्त अश्वराओं से भी बड़ी सुंदरी है, इन सुवरियों की क्या बात करता है, नहीं यहां पर भी ये सब चीजें नहीं है मैं नहीं जाना। अच्छा उन्होंने अपना पानी कमल नदी निकाल करके सोचा कि ये बच्चों के आसक्ति में नहीं जा रहा, बस उनको छिड़क दिया, छिड़कने के साथ उनके सब बच्चे हैं, वो गोपी तो पर उनको मारने के लिए जाता है किंतु वो ऊपर उठ जाते हैं मार नहीं सका। कहते तो कोई चिंता नहीं हमारी पत्नियां तो हैं, अभी एक वर्ष के अंदर में हजारों से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं, एक एक साथ में 16-16 बच्चे और एक वर्ष में 5-7 बार मार बच्चे हैं जो मनुष्यों को भी नसीब नहीं है पुरुषों को नसीब, मैं नहीं जा। अच्छा स्त्री में आसक्ति ही संसार, बस स्त्रियों को पानी प्रदूषण करके छोड़ दिया, वो भी बन अब चलेगा अभी नहीं, अरे फिर स्त्रियां भी जाएंगी अमेरिका में इंग्लैंड में बहुत सख्ती स्त्रियां हैं, 5-7 कर लेती हैं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं फिर से शादी करके फिर से घर बैठा लूंगा, इंडिया में भी हवा आ रही है भारत, कोई चिंता नहीं। फिर उन्होंने कहा जा सकते बस पानी कमल दो कर दिया और भक्षण कर दिया, साथ ही साथ इंद्र ने कहा मैं तो इंद्र हूं, मैं तो सुअर नहीं, वो गंदी नाली में भी अतिक्रम कर रहा था, गंदी चीजें खा रहा था, ईश्वरियों के साथ में भटक रहा था। मेरा तो स्वरूप है इंद्र का, बहुत ही सुंदर देखा सुरभ अद्भुत रूप, और उनको याद कहते प्रभु हमको ले चले, अब यहां नहीं रहो, यही हमारी स्थिति है। अपने दोस्तों के कारण में गोलोक वृंदावन को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके हम यहां रम रहे हैं इन हार रक्त मांस के शरीर में, और उसे अपना और मेरा कर। इसलिए इन चीजों को समझाने के लिए भारत में सरल तरीके से उपाख्यानों के द्वारा एक उद्देश्य और उसका मूल रहस्य एक दूसरा है। अब हम चलते हैं जिससे इस जगत का जन्म हुआ है, ये मुसलमान लोग भी, बौद्ध भी, ईसाई भी, समस्त जाति के लोग, हमारे आर्य समाज भाई भी, सभी लोग कहते हैं कि ये जगत की स्थिति परम प्रभु से, ब्रह्म से। अब ये विचार किया जाए, जिस ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई है, कितनी चीजें निकली हैं उपमान, संसार में कोटि कोटि ये जीव जंतु हैं, मनुष्य कोटि 84 लाख प्रकार के मनुष्य है, दुनिया है, उसमें से ये मनुष्य कितने प्रकार के, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, कितने कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, हम देख रहे हैं मनुष्य एक ही प्रकार के नहीं, उसी तरह से समस्त जीवों को मिला करके 84 लाख प्रकार की दुनिया, ये सब उनसे आकार निकला है, उसमें अब निराकार होगा तो उससे निकलेगा कि नहीं, एक कॉज एंड एक्शन थ्योरी है जिसको कहते हैं सब कारणवाद। आम की गुठली से आम पैदा होता है, वृक्ष होता है ना? अब ये देखो कि गुठली यदि ना रहे तो आम पैदा होगा कि नहीं, आम का पेड़, अच्छा बबूल के बीज से आम का पेड़ हो जाएगा, अच्छा कोई बीज मत लगाओ आम का पेड़ हो जाएगा, कोई आकार होना चाहिए, मनुष्य और स्त्री से, पुरुष और स्त्री से बच्चा पैदा होता है मनुष्य के, भेड़ और बकरी के पुत्र मनुष्य जैसे क्यों नहीं हो जाते, इसलिए जैसा कारण रहेगा वैसा ही एक कार्य होगा, आम से ही आम होगा, आम की गुठली से आम होगा, यदि वो खरका गुठली रहेगी तो वो खरका ही आम होगा, उसका गुठली से मीठा आम नहीं मिलेगा, इसलिए कारण में जो चीज है वही कार्य में है, जो कारण में दिख रहा है वो भी कारण में है, इसलिए जगत को यदि निराकार, यदि ये साकार है तो जिससे निकलता है वो भी साकार होना चाहिए, उसमें समस्त रूपों की पोटेंशियल होनी चाहिए, अन्यथा उसमें रूप इतने नहीं हो सकते हैं, उसके रूप में समस्त प्रकार के जितने रूप हैं सब उसके अंदर में है, ऐसे देखा था और थोड़ा सा विचार करके बताया, हमारे बौद्धों ने कहा जिस समय से ये जगत हुआ, इसलिए शंकराचार्य और सब लोगों ने मिलकर के प्रभाकर मंडल इत्यादि सबने मिलकर के बुद्धवाद को शून्यवाद को भारत से बाहर कर दिया, भारतवर्ष में इसका स्थान नहीं है शून्यवाद, शून्य मान्य निराकार, भगवान निराकार शून्य नहीं है, एक चीज लीजिए पानी, पानी है, पानी का क्या आकार है, लोटे में रखो लोटा जैसा, बावली में रखो बावली जैसा, थाला में रखो तो थाल जैसा, कटोरी में रखो तो कटोरी जैसा, उसमें सब प्रकार के आकार हैं, यदि आकार नहीं होता तो मैं नहीं देख सकता उनको, इसलिए उसका आकार, किंतु यू कैलेट दिखाई देता है जिसमें सब रोगों के होने की पोटेंसी है, इसलिए कौन सा उसका उसका वर्णन करे, वो ब्रह्म सत्ता धारण करता उसमें सभी रूप है निराकार नहीं, उसी से जगत पैदा हो, इसलिए उसमें सब रूप है, इसलिए हमारी जड़ आंखें हैं उसको नहीं देख पाती, इसलिए हम उसको कह देते हैं ये निराकार, सचमुच में वो निराकार, ये सब विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला ये कैसे निराकार हो सकता है, इसलिए हमारा कृष्ण निराकार नहीं, राम निराकार नहीं, ईसा मसीह निराकार नहीं, गॉड निराकार नहीं, हमारे अल्लाह खुदा ये भी निराकार नहीं। क्यों? जैसे पानी, पानी का रंग क्या है? साइंटिस्ट कहेंगे ये इसका कोई शेप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई रंग नहीं है, पानी का रंग नहीं है तो दिखता कैसे है? है बट यू कैन नॉट डिफाइन, हम उसे कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, जरूर उसके रूप है, नहीं तो आपसे कैसे दिखाई पड़ता है? उसमें कोई टेस्ट है कि नहीं? पानी में, पानी में भी अपना भी एक टेस्ट है, किंतु जहां की मिट्टी जैसी होती है, नमकीन मीठा खारा, वहां ऐसा हो जाता है, किंतु अपना एक टेस्ट है, अपना एक रूप है, एक अपना स्वाद है, और पानी पीने से प्यास को बुझाता है, ये गुण भी है, इसलिए पानी का आकार नहीं है, कहां देखिए एक जगत के रूप को भी हम देख रहे हैं, उसका टेस्ट है, क्रिया है, गुण है सब, और उसको कह देते हैं जी सैंडी जो कहते हैं वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर हैज नो टेस्ट, वाटर हैज नो क्वालिटी इत्यादि, किंतु ये जब हाथ में ठीक नहीं, क्यों कहने की खाएंगे? आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कर सकते, पानी का रूप नहीं है, पानी का टेस्ट नहीं है, उसका स्वाद नहीं है, जरूर है। जब पानी के रूप हम देखते हैं नहीं कर सकते, तो उस ब्रह्म को जिन आंखों से नहीं देखते हो, किंतु उनका आकार है, क्योंकि आंखों को देखने में सक्षम नहीं है। कैसे? आप लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अरे ये तो मट्टी का पुतला है, जो इसके अंदर में जो काम कर रहा है, जिसके अनुभव शक्ति है, जिसमें सुख पाने की इच्छा, दुख को दूर करने की इच्छा, उस आत्मा को हम देख रहे हैं, उनके लिए दूसरी आंख है, ये साधन से मिलेगी। उस आत्मा में आंख है, कान है, नाक, उसी प्रकार के उस तत्व में कई कई शास्त्र में कहा गया है अपान का दो जमना करेगा, अपान उसके हाथ नहीं है सब कुछ करता है, पैर नहीं सब कुछ करता है, ये इसलिए हमारे जैसे उसके हाथ पाक नाक कान इत्यादि नहीं, वो अजर अमर नित्य है, वो परम आनंदमय सुखमय है, इन आंखों से नहीं दिखता, वो साधन के द्वारा जब आत्मा का विकास होगा तब उसको हम देखेंगे। कृष्ण ऐसे ही है, कंस ने देखा क्या? अपना शत्रु जम के समान देखा, योगियों ने कैसा देखा? निराकार ब्रह्म देखा, तत्व को जानने वालों ने देखा कि तो परब्रह्म है। नंद जी ने देखा कि हमारा छोटा सा सांवला प्रभुना मदन मोहन है, वहां के रहने वाली स्त्रियों ने देखा ये साक्षात काम की मूर्ति है, हमारे प्राण की यतन है, सखाओं ने देखा उनको मित्र के रूप में देखा, वो निराकार है कृष्ण, किंतु मूर्ति बैठा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, एक एक चांद कला उनका कृष्ण, श्रीमद भागवत ने घोषणा की बड़ी जोर से, ये जो कृष्ण जो यशोदा जी का नंदन है, राधानाथ है, गोपी कांत है, गोपियों के प्राण पल्लव जो कृष्ण है, गौरी कराने के लिए जाता है, ये कहता है श्रीमद भागवत में घोषणा करते हैं, ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम नंद गोपाम जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण के लिए कह रहे हैं, कृष्ण कहता है जो सोदा जी कहते हैं मट्टी खाई नहीं, मरी मैं मेरी भैया मैंने तो मट्टी नहीं खाई, तू झूठ बोलता है, कहते मैं तो देख ले, और वो ब्रह्म देखो, ब्रह्मा इत्यादि के ध्यान से भी उसके चरण कमल नहीं आते हैं, उनको कोई भगे नहीं गाता, निराकार है वो, निराकार से भी पता नहीं क्या कर रही है, सीता जी के पति राम चंद्र ये निराकार है, नितिन जी निराकार है, जब नहीं देखते तो लोग कहते ज्ञान भी निराकार, जब दिखते हैं तो कहा नहीं देखी, इसे सब समय निकालू था वो जगत से उतरते हैं कि इसको अवतार करते, इसलिए ये जरा समझिए फ्रॉम नथिंग एनी थिंग कैन कम आउट, यदि कोई जीरो है, जीरो से कोई चीज नहीं हो सकती, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें गुण होता तब तो ब्रह्म से जगत की स्थिति होती, जो जीरो स्वयं ही है, जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति नहीं है, जो कुछ हो नहीं सकता, जिसका रूप नहीं बना सकता, जिसमें कोई क्रिया ही नहीं है, निर्गुण निरशक्ति निरंजन निष्क्रिय वो कभी ब्रह्म हो सकता है? ये नहीं है। इसलिए कृष्ण समस्त अवतारों के भी समस्त ब्रह्मों के भी परब्रह्म है। इसलिए कहते हैं अहो ब्रह्म अहो भाग्यम नो ब्रजा जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ये कृष्ण है, ऐसा पूरे जगत में ऐसा कोई रूप नहीं जिसको देख करके पशु पक्षी भी अपने को भूल जाते हैं, मयूर उगने लगते हैं, कोयल भगने लगती है, पत्थर भी द्रवित होने लगता है उनकी बंसी को छूल करके, सभी लोगों का जन्म सार्थक हो जाता है। ऐसे कृष्ण को कोई कहे नहीं जाता है, ये गलत है। वो उस रूप को लेकर के उतरते हैं, इसलिए अवतार उतरने को अवतार। फिर हमारे आंखों से जब चले जाते हैं उनको कहते हैं ये लीला को अप्रस्त कर दिया। कृष्ण मर नहीं जाते और उसको छोड़ करके नहीं जाते, देवताओं ने ब्रह्म इत्यादि में देखा कि कृष्ण अपने सर करीब एकदम चले जा रहे हैं, उनको बाण नहीं लगा, विषम पतामह का बाण नहीं लगा, कर्ण का बाण नहीं लगा, वो उस समय नहीं मर गए, एक बहरिए के बाण के छू जाने से मर जाएंगे, जिन्होंने बीज खा लिया जो आग उनको खा लिया और वो मर जाएंगे। तो उनकी प्रार्थना अब हम कैसे कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने यदि मर गए होते तो अभी कैसे हमारे मंदिरों में सब जगह में बैठे हुए हैं। इसलिए यह बात गलत है, यदि ऐसी बात हो उसको दूर करके रखते हैं। देखिए एक शब्द है गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, बहुत सावधानी से सुने है तो जरा गंभीर विषय, महिलाओं के लिए जरा कठिन होगा कि तो आजकल महिलाएं ऐसे पहले जैसी निरक्षर नहीं है, खूब शिक्षित जो पुरुष लोग नहीं भी समझते उनको भी सुन। मैंने कहा था कि कुछ विद्वान लोग यहाँ के अच्छे अच्छे नौजुवक और ये सब आते इन सब चीज़ों को ये समझने अच्छी तरह, मैं समझता कि महिलाओं में भी इन चीज़ों को समझने वाली है। इन चीज़ों को सबके बिना कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता, जब ये नहीं समझेंगे जैसे हमारा प्रियतम कौन है, नहीं हमारा प्रेम क्या। इसलिए इस पर हम विचार करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है कोई गुण नहीं है, उनके बाइबल में लिखा ये गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। इमेज माने क्या है? मूर्ति, अपना रूप के समान गॉड ने ये मनुष्यों को बनाया, उन्होंने घोड़ों को बनाया, हाथी को बनाया, जीव जंतु को बनाया, किंतु उसको प्रसन्नता नहीं। जब अपने रूप के समान मनुष्यों को बनाया तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वो पहले आदि मनु और शत्रु का मनु और शत्रु ये उनके रूप के अनुसार में राधा जी के अभी कल जाति थोड़ी थी, उनके राधा जी जाति तो नहीं, उनके कुछ समान तो बड़ी सुंदर और ये मनु भी कहते हुए सुंदर किंतु कृष्ण से ज्यादा नहीं सुंदर। हाँ कुछ झांसी उनमें थी उनको देखकर के समझ, तो जब गॉड का कोई रूप ही नहीं है तो हाउ ही कैन क्रिएट, वो कैसे मनुष्यों को अपने रूप के समान बनाया? तो उनको सबसे पहले बाइबल से इसको काट देना चाहिए। इसलिए बाइबल की गलती है कि खुदा था गॉड का रूप है। गॉड माने क्या? जी ओ डी है ना, जी माने जनरेटर सृष्टि करने वाला, और माने अस्पताल पालन करने वाला पोषण करने वाला। अभी हमारा पाल पोषण माता के गर्भ में किसने की? माता ने कही मैया बच्चा और डाल दिया, रोटी खा दिया और दूध कैसे बन गया? और स्तन में जिन लड़की स्त्रियों को संतान दिए उनके दूध क्या नहीं होता? उनके बुद्धि का विकास किसने किया? उनको सबल स्वास्थ्य कौन बनाया? ये साफ उनके विकास चीज को समझ नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया गॉड का वही तात्पर्य वो समझ नहीं पाते हैं। तो गॉड माने जी माने जो पैदा करने वाला, हम लोगों को उसने पैदा किया, और ओ माने आउटपुट, और डी माने अगर जिस करता धंस कर देता है जब जरूर। ये धंस भी करुणा का एक भाव है। कैसे? जैसे हमने खेती बनाई, खेत को चलाया, फसल को निकाल करके फेंक दिया, उसमें खाद दिया, पानी दिया, बीज दिया, कुछ दिनों के बाद में हरियाली आई, उसमें बीज अंकुरित हुए और फिर जब वो पुष्ट हो गया एकदम पूरा, उसकी रखवाली की कोई जुड़े न ले। जब एकदम पक गया तो क्या किया, अपने हाथ से हंसिए लेकर के काट लेते हैं। काटने के बाद में क्या करते हैं, उसके बीज को रख लिया और बाकी जो उसका जो पौधा था सूखा हुआ उसको जला दिया, या गाय को खिला दिया, भैंस को खिला दिया, उससे कोई मतलब नहीं, उसका मूल्य नहीं। जब तक उसमें अनाज है तब तक उसका मूल्य है, और जब नहीं रहा बेकार का जंजाल है। यदि जीवात्म नहीं रहे उस शरीर को रखो ना घर में, क्यों नहीं रखते। शरीर माता पिता भाई बहन उपति नहीं है, इसमें आत्मा है, बोध असल। तो उसी प्रकार से शंकर जी ध्वंस कर देते हैं ब्रह्मा भगवान का, ध्वंस होने का आत्मा का ध्वंस नहीं करते वो, ये शरीर जो बाकी रह जाता है उनको, तो ये दया का समय है। बीज को रख लिया, फिर से उस बीज को संसार में दे देते हैं, दूसरी बात प्रलय के बाद में। इसलिए तीनों दया के काम है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शंकर को कहते हैं तांत्रिक, ब्रह्मा जी को कहते हैं रजोगुणी, और विष्णु को कहते हैं सांसिक। किंतु इसके बहुत फिलॉसफी इसके अंदर में है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी कहा सत्य एवं सम्यक् अग्र आदि, सत्य एवं सम्यक्, सत्य जो पूर्ण सत्य है, सत्यम परम देवी, यही ब्रह्म है। ये कौन है, एक ही चांद कला कृष्ण तू भगवान, कृष्ण ही है सन्या, ब्रह्म उनके चरणों की अंगुलियों की नख में जो कनिष्ठ अंगुली है उस नख की ज्योति मात्र है, उसलिए उनमें आकार नहीं मिलता। किंतु जैसे चंद्र का आकार सूर्य का आकार हम लोग नहीं देखते, सूर्य का उसकी ज्योति को देखते हैं, वही ब्रह्म है जिसको योगी लोग ध्यान करते हैं। किंतु कौन सा वो है, कृष्ण के नक्ष चंद्रिका की ज्योति स्वरूप वो है। कृष्ण नहीं रहने से ज्योति क्या है, कि सूर्य नहीं रहने से ज्योति सूर्य का आकार है, नहीं तो जैसे सवेरे कैसे दिखता है, सूर्य की ज्योति नहीं है, उनमें आकार नहीं है सूर्य की। ऐसा संसार में कोई चीज नहीं है जिसका आकार नहीं है, तो वो ब्रह्म का आकार नहीं है। हम लोग कहते हैं मुसलमान भाइयों ने भी पूरा किया, उसने इन्ना लहा फला का मैं सूरत भी, मैं सूरत का लिखा अपने सूरत के अनुसार में खुदा सल्लाह ने इन मनुष्यों को बनाया। तो यदि वो भी निराकार नहीं मानते, भगवान को निराकार, ब्रह्म को निराकार, तो अपने स्थान से इसको निकाल लें। इसे सत्य जो मुसलमान है भगवान का रूप मानते हैं, बहुत से बड़े बड़े मौलवियों से हमारी बातचीत हुई है, वो लोग भी अपने खुदा का खुद माने खुद, यदि कोई है ही नहीं तो खुद क्या, इसलिए ब्रह्म का रूप है, यदि नहीं है तो ये कैसे काम कर सकते थे। जब एक दिन आता है जबकि खुदा तल्ला उठ करके और सबका जो मर गए हैं उनका विचार करते हैं, कौन अच्छा किया बुरा किया, यदि उनका आकार ही नहीं तो विचार क्या करेंगे, किसका विचार करेंगे, जिसका रूप ही नहीं है और ब्रह्म का, तो विचार करने वाले कौन है। हमारे मन से ही तो और अल्लाह माने होता है सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, किंतु हमारे ब्रह्म कहते हैं बृहत से बृहत और छोटे से छोटे, अनुरव अज्ञान महत्व अपमान, हमारे उन लोगों की आइडिया नहीं है ब्रह्म के संबंध में, इसलिए एक भाव लिया बड़ा, जो बड़ा है और छोटा नहीं हो सकता उसकी नहीं ले सकता, जो इतनी शक्ति नहीं है कि धारण कर सकते वो ब्रह्म और अल्लाह खुदा ब्रह्मा कैसे हो सकता है, वो तो एक निर्जीव कुछ पता नहीं। इसलिए भक्तों का यह विचार या और सब दार्शनिकों का विचार, न्यूटन इत्यादि का विचार, पाश्चात्य दार्शनिकों का विचार यह गलत है कि ब्रह्म निराकार है और ये शक्ति है, उसमें करुणा भी नहीं है, तो वो करुणा नहीं है जिसमें तो उस ब्रह्म को आराधना करके लाभ क्या, उसका कथिता ही नहीं है तो पश्चिमी का गणित क्या होगा, उस ब्रह्म के लिए क्या जरूरत है। जब वो निराकार में शक्ति है तो उसका मंदिर में हम पूजा जा उसके लिए वो प्रार्थना का स्थल जिसको कहते हैं मुसलमान मस्जिद, मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है, जिसका आकार ही नहीं है तो मस्जिद किसके लिए, जिसका आकार नहीं है उसको अल्लाह उसके लिए गौर के लिए वो बनाते हैं क्या, जहां पर रोज चार 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 बनाने की जरूरत क्या, हमारे भगवान के लिए जरूरत है मंदिर की, उसमें रहेंगे बड़े सुंदर सोने का मंदिर बनाएंगे, किंतु जिसका आकार ही नहीं है तो उसका रहने के लिए ये इन सब चीजों की क्या जरूरत है?
नहीं, अच्छे मुसलमान अच्छे ईसाई जो चुके हैं वो मानते हैं कि प्रभु का आधार है, गौर का आधार
नहीं, तो विचार कैसे करते हैं? दया नहीं लगी तो किससे प्रार्थना करते हैं? वो लोग प्रार्थना करते हैं गिव मी गॉड, गिव मी ब्रेड एंड बटर, किसे मानते हैं? जिसको दया ही नहीं है उसे ब्रह्म को मानने की जरूरत क्या है, गौर को मानने की जरूरत क्या है? इसलिए हमारे विश्व में ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनमें नहीं है, कि तो प्राकृतिक गुण नहीं है। इसलिए आप विचार करते हैं, सुनने से ये जगत नहीं है, ये कोई सुंदर आकाश वो कृष्ण आकाश, ये कृष्ण से ही जितनी की स्थिति करें क्या है, उनके अंत अंतों के कारण फ्रॉम नथिंग एनी कैन एनी थिंग कैन है, जो जीरो से है उसे विश्व कैसे निकलेंगे? इसलिए बहुत बात का अधिकार एकदम फूल इन छोरों को नहीं समझने से आजकल रुपये पैसे के लिए पदों के लिए बहुत से हिंदू लोग आज बन रहे हैं, बहुत कोई बन रहा है जैन, कोई बन रहा है ईसाई, इसलिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्त्रियां सुंदर सुंदर पति मिल जाए, हमको कुछ अधिकार मिल जाएगा इससे, हम बड़े खास से जीवन ला रहे हैं, किंतु जब बन करके जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें बेकार का आना हुआ, अभी नहीं समझते हैं। इसलिए दर्शन की समथिंग कोई चीज होनी चाहिए, चीज बने जिसका रूप है, गुण है, कोई क्रिया है, तब तो वो वस्तु है, नहीं तो वस्तु नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में क्या बताया गया, पूर्णमीदम पूर्णमद पूर्णात पूर्णम उदुष्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ये पूर्ण है, कौन पूर्ण है? भगवान पूर्ण, कृष्ण पूर्ण है, परम ब्रह्म हम ये पूर्ण है, उसमें जितने भी कुछ निकालो वो पूर्ण ही रहेंगे, और फिर उनमें जो कोई भी चीज दे दो वो पूर्ण ही रहते हैं, उन कभी भी उनमें कमी नहीं आएगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, पूर्ण माइनस पूर्ण भी पूर्ण है, जितना भी निकालो उसमें से पूर्ण में से, समुद्र के में से एक बूंद पानी निकालो एक बूंद कम हो जाएगा, पहाड़ों से इतनी मिट्टी निकालो उतना जरूर कम हो जाएगा, किंतु ब्रह्म से कुछ भी निकलेगा वो पूर्ण के पूर्ण है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर। इसलिए हमारे कृष्ण हमारे राम हमारे सब अवतार जितने हैं विशेष करके कृष्ण जो स्वयं शर्मा है वो पूर्ण के पूर्णतम से पूर्णतम है, वो कृष्ण है, उनसे ये जगत मिला, ऐसे कृष्ण को हम ध्यान करते हैं जी बड़ी। अब चलो कुछ लोग कहते हैं जिसका जन्म है वो मर जाएगा, इसलिए कृष्ण का जन्म तो हुआ है तो वो मर जाएंगे, शास्त्र कहते हैं ऐसा मत कहो, समझने की चेष्टा करो, देखो वृंदावन में एक मंदिर था अभी 500 वर्ष की बात, उनका नाम था मदन मोहन, अभी समय वो जयपुर के करौली में वो चली गई थी, किंतु अभी भी मदन मोहन का वो जो प्लेस है जगह है वहां पर, 5000 वर्ष पहले इसकी स्थापना कृष्ण के प्रभाव से बद्रनाथ ने की, 5000 वर्ष के बाद में कुछ मुसलमानों के भाई थे और कुछ हमारे गुरु जो पूजा करने वाले थे उनके स्वास्थ्य से ठाकुर जी वहां से, जब तक कभी ये पूजा लोग पूजा करने वाले लोग अपने को भक्त करने वाले लोग भगवान का निरादर करते हैं और भगवान को बेचने लगते हैं, भाई 10 रुपया प्रणामी देकर के प्रणाम, अच्छा ठाकुर जी को प्रणामी की जरूरत है? वो तो सबके लिए सुलभ है, उन्होंने जो कुछ हवा पानी जो कुछ बनाया बिना पैसे का बनाया, तो उनके दर्शन में प्रणामी देकर के ही जाना पड़ेगा, अभी वृंदावन में चले जाइए कहीं चले जाइए कहे नहीं पहले प्रणामी देकर के भूल दो, वहां पर भगवान नहीं करते, जहां निरादर करते हैं ठाकुर जी को पैसा बिजनेस बना देते हैं, भाई आजकल नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मंदिर बना लो खड़ा कर दो इसमें खूब कह देते हैं, जो कुछ जब मंदिर में जाएगा उसकी इच्छा पूर्ण हो गई तब आएंगे खूब चढ़ावा देंगे और उसका खूब मर, ठाकुर पत्थर थोड़े खाता है, तब वो ठाकुर की मंदिर जाएगा, इसलिए वृंदावन में चले गए, वृंदावन में उनकी सेवा में कुछ गड़बड़ी थी, तो मुसलमानों का भय दिखा करके दूसरी जगह जहां उनको प्यार मिलता है चले जाते हैं, प्यार के दूसरे प्रेम के। भूख लगती है तो बड़े बड़े लोगों के आने ब्रह्मज्ञानियों के योगियों के पास में सबरी के घर में देर के लिए ललक करके जाएंगे, उनको भूख लगेगी। दुर्योधन के घर में मन और मेवा को प्यार किया और जाएंगे कहां, दिव्यानी के घर में, वो भी क्या खाएंगे क्या। दुराज में प्रेम में पगी हुई खिलकों को खिला रही है और अति जी को फेंक रही और बड़े प्रेम के कारण बिजुते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे बोलो इसको मैं प्रेम का भूखा हूँ, रोटी और अच्छे अच्छे पदार्थों का मैं भूखा हूँ। कैसे ये कृष्ण बैठी थी भगवान जी का जीवन क्षेत्र तो देखो। इसलिए 5000 वर्ष के बाद में लोगों का भावना देखी और वो मिट्टी के अंदर। अब 5500 वर्ष हुए, भक्तों ने इनको ढूंढ निकाला। मथुरा में एक ब्राह्मणी के पास में वो उनके घर में मंदिर में रहा। लोग समझते कि पत्थर की मूर्ति है और उनके बच्चे के साथ में खेलते मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में मूर्ति जैसा हो जाए और जब फिर घर में रहते हैं कहते हैं भैया मुझे भूख लगी है, दोनों भाई मिलकर के खेल रहे हैं मदन जी और उसका नाम कोई था मदना और सदना, उस बुढ़ी के लड़के का नाम था सदना, इनका नाम था मदना, दोनों बड़े प्यार से खेलते। और वो बेचारी क्या करती जब सदरे कलेवा के लिए जबकि मचलने लगते रोने के लिए लगते तो वो स्नान नहीं की होती, बिना स्नान किए बिना चट्टी पट्टी किए गए न कपड़े बदले न कुछ किए खिचड़ी चढ़ा देती और दातुन कर रही थी दातुन से उसको चला देती। कृष्ण बड़े प्रेम के साथ में मदन और उसके लड़के दोनों खाते और बड़े खुश हो जाते। इसके बाद में कृष्ण मंदिर में चले जाते और वो बच्चा दोनों कभी कभी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी पढ़े